ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम वर्षा कराने की अनुमति देने की मांग की। भाजपा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मुकुंदपुर डिपो के चरण 4 मार्ग परियोजना के अंतर्गत नई मेट्रो बोगियों का निरीक्षण किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान शीर्षक से 3 सप्ताह का अभियान शुरू किया। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत की स्मृति में देश के शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़े का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अलका सिंह। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को राजधानी में कृत्रिम वर्षा कराने की अनुमति देने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। श्री राय ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कृत्रिम वर्षा के लिए आपात बैठक बुलाएं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे। आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए कि जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है डीजीसीए एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए।
भाजपा युवा मोर्चा ने आज राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम में असफल रहने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ आनंद विहार में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने मास्क लगाकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासियों को सावधान रहने का संदेश दिया। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही का खामियाजा दिल्लीवासी भुगत रहे हैं।
आप और हम जो हवा ले रहे हैं ये हवा नहीं है, ये धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जा रहा है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बस से बदतर करने का काम किया। ये आने वाले समय की चेतावनी है। दिल्ली में बस से बदतर हालात होगी, इसलिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अति गंभीर श्रेणी में 452 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 454, बवाना में 664, वजीरपुर में 465, आनंद विहार में 465 और आरकेपुरम में 448 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक सुबह के समय रात में धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सभी न्यायाधीशों से कहा गया है कि वो जहां भी संभव हो वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दें। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल सहित वकीलों ने दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते प्रदूषण का उल्लेख किया और इससे निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की। जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी न्यायाधीशों से कहा गया है कि वे जहां भी संभव हो वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दें। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने आज मुकुंदपुर डिपो में चरण 4 मार्ग परियोजना के अंतर्गत नई मेट्रो बोगियों का निरीक्षण किया। सुश्री आतिशी ने इन बोगियों की अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की सराहना करते हुए कहा कि मुकुंदपुर डिपो में 6 डिब्बों वाली चालक रहित मेट्रो का संचालन मैजेंटा लाइन पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली मेट्रो बहुत तेज गति से विस्तार कर रही है।
आप दिल्ली मेट्रो की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखिए तो पिछले 10 साल से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी मेट्रो की एक्सपेंशन की स्पीड 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 1998 जब दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हुआ था से 2014 तक दिल्ली मेट्रो में कुल मिला के 193 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि बीते कल रिकॉर्ड 78,67,000 यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया। डीएमआरसी के अनुसार ये मेट्रो के इतिहास में अब तक की यात्रियों की सर्वाधिक संख्या है। डीएमआरसी ने बताया कि ये आंकड़े दिल्ली मेट्रो पर विश्वसनीयता और दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में निर्बाध यात्रा पर यात्रियों द्वारा दिखाए गए बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। डीएमआरसी ने कहा कि निगम राजधानी में वायु गुणवत्ता की गिरावट को देखते हुए सप्ताह के दिनों में 60 अतिरिक्त यात्राएं चला रहा है, जिसके कारण सामान्य से अधिक वहन क्षमता मिल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। 43वां व्यापार मेला 14 नवंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। मेले के पहले चार दिन व्यवसायियों के लिए थे। इस वर्ष के मेले का थीम विकसित भारत 2047 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले के आज से आम लोगों के लिए खुलने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडपों में लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी।
इस मेले में देश के सभी राज्यों के अलावा चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में थाईलैंड की एक प्रदर्शक रोज ने बताया कि ये मेला उन्हें नए बाजार को तलाशने और भारत को समझने में मदद कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान के एक अन्य प्रदर्शक इकबाल ने मेले में प्रदर्शित किए जा रहे अपने उत्पादों के बारे में बताया।
जो यहाँ पे जो लोकल मार्केट में इनको माल मिलता है वो क्वालिटी जो हम बेचते हैं काफी डिफरेंट होता है। जो क्वालिटी हम बेचते हैं वो एकदम प्रीमियम होता है, वो इम्पोर्ट होता है अफगानिस्तान से, डिमांड बहुत ज्यादा है। ये
मेले के टिकट ITPO की आधिकारिक वेबसाइट, DMRC ऐप और दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा 55 स्टेशनों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी जा सकती है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान के साथ सकलेन अख्तर।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान शीर्षक से 3 सप्ताह का अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और देश भर में शौचालयों की कार्यक्षमता और रखरखाव को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव को सुदृढ़ करना है। अभियान के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्वच्छता सफलता की कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका समापन अगले महीने की 10 तारीख को होगा, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में समर्पण और दक्षता के लिए भारतीय वायुसेना की सराहना की है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन में आज कहा कि वायुसेना आने वाली चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए क्षमता निर्माण को और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व की वर्तमान चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार टिकाऊ और लाभदायक कृषि तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 30% कृषि योग्य मिट्टी खराब हो चुकी है और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्राओं और शोधकर्ताओं को स्थानीय और वैश्विक मृदा चुनौतियों का सामना करने वाले नवाचारों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा प्रोत्साहन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का आह्वान किया। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस महीने की 24 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से 20 दिसंबर तक चलने वाला है। दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। सुश्री आतिशी के मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद यह पहला सत्र होगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा की बैठक अस्थायी तौर पर 29 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है। सचिवालय के अनुसार कार्य की आवश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ाई जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को स्मरण करने के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और उनके योगदान का सम्मान करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से आदिवासी परिवारों के लिए बांस की कटाई, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिससे उन्हें आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। 45 लाख से अधिक जनजातीय लाभार्थियों को वन धन विकास केंद्रों से समर्थन मिला है, जिससे उन्हें वन उपज में मूल्य जोड़ने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया है। पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 1,20,00,000 जनजातीय किसानों को कृषि में निवेश करने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है। वर्ष 2014 के बाद से जनजातीय गांवों को हजारों किलोमीटर सड़कों से जोड़ा गया है, जिससे वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए नए अवसर बन गए हैं। पल्लवी परमार के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ हवा और आधुनिक परिवहन के दृष्टिकोण की सतत गतिशीलता के प्रति सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रयासरत है। केंद्र जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जनों में कटौती करने पर काम कर रहा है। श्री स्वामी ने नई दिल्ली में ई गतिशीलता में तेजी लाना, समर्थनकारी और अनिवार्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार समूचे राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का व्यापक पैमाने पर उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन संबंधी देशों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यालय के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा कि सरकार का बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने और डीजल वाहनों को पूर्ण रूप से हटाने को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के माध्यम से विभिन्न शहरों के पार्किंग स्थलों, कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों की चार्जिंग अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 55वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी कल से गोवा में शुरू होने जा रहा है। ये महोत्सव 28 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। एक संवाददाता सम्मेलन में कल गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और गोवा मनोरंजन सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ सावंत ने घोषणा की कि इस महोत्सव के दौरान 81 देशों के 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली NCR में गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक के मद्देनजर गुरुग्राम के उपायुक्त ने सभी निजी संस्थानों और कॉरपोरेट दफ्तरों को कल से 50% वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की सलाह दी है। उपायुक्त कार्यालय ने बताया कि वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को देखते हुए निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति के निर्देशों के तहत लिया गया है। ये निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेगा। दिल्ली में आज सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम वर्षा कराने की अनुमति देने की मांग की। भाजपा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मुकुंदपुर डिपो में चरण 4 मार्ग परियोजना के अंतर्गत नई मेट्रो बोगियों का निरीक्षण किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान शीर्षक से 3 सप्ताह का अभियान शुरू किया। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत की स्मृति में देश के शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़े का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।